अध्याय में श्लोक 20 से लेके 24 तक जो है जीवन मुक्त के लक्षण है, ज्ञानी के लक्षण बताए गए हैं। तो 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रिय वस्तु को प्राप्त करके तो हर्षित न हो, अर्थात इष्ट वस्तु पाकर तो हर्ष न माने, और अप्रिय अनिष्ट पदार्थ के मिलने पर उद्वेग न करे। उसके पसंद की चीज आ गई, मिल गई, तो उसमें कोई विशेष हर्ष की बात नहीं है। जो चीज पसंद नहीं है वो आ गई तो उद्वेग नहीं है। अच्छा, सब भूतों में आत्मा एक है, सम है और निर्दोष है, ऐसी संशय रहित बुद्धि जिसकी स्थिर हो चुकी है, जिस जो सब जगह एक ब्रह्मन सबकी आत्मा में एक को देख पाता है, ऐसी उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। केवल इंटेलेक्चुअली नहीं, स्थिर हो गई है। और जो मोह अज्ञान से रहित है, ज्ञान हो गया तो अज्ञान चला गया, अज्ञान से रहित है, वह स्थिर बुद्धि ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में ही स्थित है, अर्थात वह कर्म न करने वाला सर्व कर्मों का त्यागी ही है। कर्म करेगा मगर वो कर्म करने वाला नहीं है, क्योंकि ब्रह्मन अकर्ता है। वाह्य सर्वस्व असक्त आत्मा, वाह्य स्पर्शेशु असक्त आत्मा, बिंदत आत्मनी असुखम, कैसे उसको सुख मिलता है, आत्मा का सुख, उसने बाह्य सुखों को उसमें आसक्त नहीं है, उसको छोड़ दिया, बाह्य सुखों को छोड़ दिया, फिर तो अंतर का सुख मिलेगा। सह ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षय उष्णते, ब्रह्म में जो समाधि है उसका नाम ब्रह्म योग है। उस ब्रह्म योग में जिसका अंतःकरण युक्त है, तो ऐसे ज्ञानी का अंतःकरण कहां युक्त है, ब्रह्म में युक्त है। हमारा अंतःकरण कहां युक्त है, बस इतना ही फर्क है, एक को छोड़ना है दूसरी जगह लगना है, इतना ही काम है। इसलिए वो क्या है, युक्त है, अच्छी प्रकार से उसमें समाहित है, लगा हुआ है। ऐसा पुरुष अक्षय सुख को अनुभव करता है, प्राप्त होता है अक्षय सुख। हमारा विषयों का सुख कैसा है, क्षय वाला है, उसके अंदर डिग्रीज हैं, मगर ब्रह्म के सुख में कोई डिग्री नहीं है। अच्छा, इंद्रियों को वो अपने विषयों से क्यों हटा लेता है, भगवान कहते हैं यही संस्पर्धा होगा दुख योनो एवत, जितने भी विषयों के सुख हैं वो अल्टीमेटली जो है दुख की योनी है। क्यों दुख की योनी है,
राग द्वेष आ जाते हैं, फिर भय आ जाता है,
जीवित काल में वासना बनती है और मृत्यु के बाद भी ये दुख की योनि है, क्योंकि वासना के अनुसार आपको नया शरीर मिलेगा। तो अगर आप विषयों के सुख के अंदर में आप अगर रमन करते हैं तो जीवित काल के अंदर वासना बढ़ रही है, और मरणोपरांत तो ये दुख की योनि हुई कि नहीं, इसलिए दुख की योनि है। आद्य अंत बनता है कौनते न तेसु रमते बुध है, ये विषय सुख कैसे है, आदि होता है, इनका अंत है, कुछ समय तक रहते हैं। कोई भी विषय सुख आज तक हमको परमानेंट सुख नहीं दिया, दिया है नहीं दिया। न तेसु रमते बुध है, बुध में ज्ञानी लोग ऐसे सुख में नहीं रमते। तो कैसे सुख में रमते हैं, वो अंतरात्मा अंतर में सुख। फिर बताते हैं शक्नोति ये भैया सोडुम प्राक शरीर विमोचना, प्राक शरीर विमोचना, शरीर छूटने के पहले अगर कोई आदमी काम क्रोध के बेग को अगर उसको सहन कर सके, जैसे ही काम क्रोध आता है उसका एक वेग होता है, उस वेग को जो सहन कर सकता है तो वो आदमी भगवान कहते हैं सयुक्ता ससुखी नर। तो यहां आप शंकराचार्य जी कहते हैं जीवित पुरुष के अंतकरण में काम क्रोध का वेग अवश्य ही होता है। हम लोग सब जीवित हैं, जीवित हैं तो काम और क्रोध अवश्य होगा। क्यों होगा बताओ, बीएमआई चार्ट के हिसाब से बताओ, वासना है तो आपके उसके अंदर डिजायर आएगी, डिजायर आएगी तो काम है, काम आने से वेग बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा, इसलिए मरण पर्यंत की सीमा की गई है। सीमा क्या है, ये काम कब तक आ सकता है, काम क्रोध, मरण पर्यंत, प्राग शरीर विमोचना, किसी टाइम भी आ सकता है, क्योंकि वह काम क्रोध जनित वेग अनेक निमित्तों से प्रकट होने वाला, किसी तरीके से घूम फिर के आ जाएगा, उसके अनेक कॉजेज हैं, अनेक उसके हेतु हैं। अतः मरने तक उसका विश्वास न करें, सदैव उससे सावधान रहें, यह अभिप्राय है। ऐसा काम और क्रोध वेग को जो सहन कर सकता है, उसको सहन करने का उत्साह रखता है, वह मनुष्य इस संसार में योगी है और वही सुखी है। अच्छा, फिर बताते हैं कि जीवन मुक्त के और क्या लक्षण है। यह अंतर सुख है, अंतर अंतराराम है तथा अंतर ज्योति एव है। अंतर सुख है मतलब बाहर विषयों के सुख में वो नहीं रमता है, कहां रम रहा है, अंतर सुख। कितने किस्म के सुख होते हैं, तीन, थ्री टाइप, प्रिय मोर देन प्रणाम। सुख के सोर्स कितने हैं,
पांच,
पांच है। सुख का सोर्स एक है, वो क्या है, आत्मा। सुख का सोर्स एक है, अंत सुख है, वो ही परमानेंट सुख है, बाकी सब जो है हम उसको सुपर इंपोज करते हैं। विषयों में सुख नहीं है, विषयों पर हम सुख सुपर इंपोज करते हैं, अध्यास करते हैं उसको पर में कि ये विषय हमको सुख दे रहा है। एक्चुअली वो सुख भी जो है वो आत्मा का ही सुख है, सुख का सोर्स केवल एक है। जो ज्ञानी है वो कहां रमता है, अंतर सुख में। अंतराराम है, अंतराराम है मतलब वो बाहर क्रीड़ा नहीं करता है। हम लोग कहां क्रीड़ा कर रहे हैं, विषयों में क्रीड़ा करते हैं ना, वो कहां रमता है, ज्ञानी भीतर रमता है अपनी आत्मा में। आत्मनि ये बात मना संतुष्ट है, स्थित प्रज्ञ के लक्षण में भी बताया गया ना, प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। वो कहां रमता है, अपनी आत्मा में रमता है। अंतर ज्योति, अंदर प्रकाश है, भीजन भीतर है, पूरा अंतकरण प्रकाशित है उसका, अंतकरण प्रकाशित है। अच्छा, तो यह योगी ब्रह्म निर्माण ब्रह्मभूत अधिगच्छति, वो ब्रह्म निर्माण मुक्ति को पाता है, ऐसा व्यक्ति मुक्ति को पाता है। तो ये तो हुए जीवन मुक्त के लक्षण। अब ये उसको मिला कैसे, ये ज्ञान मिला कैसे, वो कैसे मिला बताइए। बताइए, किताब देख सकते हैं आप देख के बताइए। नहीं, इस अध्याय में कैसे बताया है श्रवण मनन निदिदासन, तो ठीक है, मगर इस अध्याय में कैसे बताया है? सत्रहवां श्लोक देखिए, वहां पूरी विधि बता दी है कैसे उसको मिलाइए। तद बुद्ध है, तद आत्मन, तद निष्ठा, तत्परायणा, इसको उर्दू की तरह चलाना है। तत्परायणा, तत्परायणा मतलब उसका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, वो आत्मा है। तत्परायणा गोल, उसका लक्ष्य ठीक हो गया। तद निष्ठा, निष्ठा कहां है उसकी, श्रवण और मनन में निष्ठा है। तद आत्मन, तद आत्मन मतलब निधिध्यासन। तद बुद्ध है, अपरोक्ष अनुभूति हो गई। तदात्मा, ये प्रोसेस है यहां पर बताया गया। अल्टीमेटली अशोक जी ने जैसा कहा श्रवण मनन निधिध्यासन, मगर हमारे इस श्लोक के हिसाब से ऐसे बताना होगा, उसको इस तरीके से ज्ञान प्राप्त हुआ। अच्छा, अब 25वां श्लोक।
लभते ब्रह्म निर्वाणम्,
लभते ब्रह्म निर्वाणम्,
ऋषय क्षीण कल्मषाः,
ऋषय क्षीण कल्मषाः,
छिन्न द्वैधायतात्मानम्,
छिन्न द्वैधायतात्मानः,
सर्वभूतहिते रताः,
सर्वभूतहिते रताः,
लभते ब्रह्म निर्वाणम्, ऋषय क्षीण कल्मषाः, छिन्न द्वैधायतात्मानः, सर्वभूतहिते रताः।
देखो, अगर आपको ज्ञानी बनना है तो आपको क्या साधना करनी चाहिए, एक श्लोक में भगवान बताते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय छीन कल्मषा। छीन कल्मषा कौन हुआ, जिसकी पाप वासना खत्म हो गई, जिसके वासना खत्म हो गई, निगेटिव टेंडेंसीज खत्म हो गई। अच्छा, वो श्लोक को क्या कहा भगवान, कहते हैं वो ऋषय, वो ऋषि है। तो ऋषि कैसे बना है, प्रश्न आता है ऋषि कैसे बना, तो आगे हमने देखा है कि अगर आपकी बुद्धि सम्यक दर्शिना हो गई, सम्यक दर्शिना मतलब ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मनाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, सम्यक सब कुछ में वो ब्रह्म देख रहा है, ज्ञानी है वो, सम्यक दर्शिना है। या तत्वदर्शिना है, तत्वदर्शिना का मतलब क्या, कर्मणी अकर्म या पश्येत अकर्मणी च कर्म या। देखो, ये सब आपको बताया गया था, चौथे अध्याय का ये प्राण श्लोक है। कर्मणी जब कर्म करता है तो उसमें अकर्म को देखता है, अकर्म को देखता है मतलब अकर्ता आत्मा को देखता है, कर्म कर रहा है मगर उसका ध्यान। और अकर्मणी च कर्म, अकर्म आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, इसमें कर्ता भाव है ना, कर्ता भाव है, जो इस तरह देखता है वो ज्ञानी है। तो सम्यक दर्शन है, तत्वदर्शिन है, और तत्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभाग यो गुना गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। जिसको ये पता लग गया, क्या पता लगा, तत्ववित्त है, वो जानता है, क्या जानता है, गुना गुणेशु वर्तन्ते, गुण गुण के साथ वर्तन कर रहे हैं। गुण का मतलब क्या, गुण कितने हैं, पांच मत बोलना गुण फिर तो मेरे जैसा कोई मूर्ख नहीं होगा, पांच साल से मैं पढ़ा रहा हूं, फिर अगर भी कोई कोई कहे गुण पांच है,
पांच है,
हाँ एकदम। देखो, पहले माया है, माया क्या है, माया को कहते हैं त्रिगुणात्मिका। तो त्रिगुण इज इक्वल टू माया, आप कभी ऐसा मत कहना कि माया के अंदर त्रिगुण है, माया इज इक्वल टू त्रिगुण, माया के तीन गुण ऐसा मत कहना, माया इज इक्वल टू सत्व रजस तमस। उस सत्व रजस तमस से फिर पांच महाभूत आए, पहले सूक्ष्म महाभूत आए, उसके बाद में स्थूल महाभूत आए, तो स्थूल और सूक्ष्म पंच महाभूतों से मेरा शरीर बना और सारा ब्रह्मांड बना। तो वर्तन किसमें हो रहा है? पांच महाभूत के सहपात पांच महाभूत। अब पांच महाभूत को उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तीन गुण के साथ में तीन गुण, तीन कॉमन फैक्टर, तीन को भी निकाल दो। अलजबरा है थोड़ा सा यहां पर। गुना गुणेशु वर्तन्ते, गुण गुण के साथ वर्तन कर रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, इति मत्वा न सज्जते, उससे नहीं जुड़ते हैं। किससे नहीं जुड़ते हैं? गुण से जो चीज बनी है, गुण से आपका शरीर बना है, ऐसे लोग शरीर के साथ नहीं जुड़ते, आइडेंटिफाई नहीं करते। और सारा ब्रह्मांड किससे बना है? त्रिगुण के साथ, उसके भी नहीं करते हैं। तो मेरा शरीर और सारा ब्रह्मांड क्या है? अनात्मा है, न सज्जते, उसके साथ नहीं जुड़ते। किससे जुड़ते हैं? अनात्मा से। आत्मा से जुड़ते हैं। अच्छा, सन्यासी, सन्यासी कौन है? जिसके अंदर ज्ञान की निष्ठा है। उसको निष्ठा कैसे प्राप्त हुई? श्रवण मनन निधि ध्यान से हो गई। ये चार किस्म के आदमी को ऋषि कहते हैं। कौन से होंगे ऋषि? भूलना नहीं, ये आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलने वाला है। सुन के यहां रजिस्टर करो, यहां से इधर नहीं निकलना चाहिए। फिर अगले दिन पूछेंगे ऋषि का मतलब क्या है बताओ। ऋषि है, लभते ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म में लीन हो जाता है, स्थित हो जाता है, माने मोक्ष मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है। अब प्रश्न आता है कैसे ऋषि बने, कैसे ऋषि बने? पहला है छीन कल्मषः। पहले आपको अपनी निगेटिव वासना हटानी है। बीएमआई चार्ट के अंदर आपको पहला काम क्या करना है? वासना को हटाना है। वासना छीन कैसे होगी? सबको ही बोलो भाई। छह साल कंप्लीट होने आए हैं हमारे, कर्म योग से होगी। छिन्न द्वैधा, छिन्न द्वैधा जिसके अंदर संशय खत्म हो गए हैं, कोई संशय नहीं है। संशय का मतलब क्या होता है? संशय का मतलब होता है आप एक निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, डाउट है, ये करे कि ये करे, ये करे कि ये करे, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, संशय। हमारे पास में क्या संशय है? हमारे पास अभी संशय डाउट हैं, जीव जगत ईश्वर के डाउट हैं। जीव क्या है, जगत क्या है, कब बना, कैसे बना, ईश्वर कौन है, ये सब हमारे डाउट हैं। तो जब ये डाउट चले जाएंगे तो पहली क्वालिफिकेशन क्या चाहिए ऋषि बनने के लिए? छीन कल्मषः। दूसरी क्वालिफिकेशन छिन्न द्वैधा, नो डाउट, कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। इसलिए बराबर हम लोग आपको क्या कहते हैं, आपका ज्ञान संशय युक्त होना चाहिए, संशय रहित होना चाहिए, डाउट फ्री। ज्ञान बराबर संशय रहित होना चाहिए। यत आत्मना, देखो तीसरा तीसरा चीज क्या चाहिए? तो पहला क्या था? छीन कल्मषः। उसके बाद दूसरा संशय रहित ज्ञान होना चाहिए, कोई संशय नहीं रहना चाहिए। तीसरा यतात्मना, संयत इंद्रिय, जिसने मन अपने इंद्रियों को संयत कर लिया। क्यों संयम जरूरी है भाई? सिंपल सिंपल विज्ञान है ये, आप लोग बताओ क्यों संयत इंद्रिय है? नहीं, आपका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कि पांचों का ज्ञान इंद्रिया, अगर इसको हम नहीं रोकेंगे तो ये क्या करेंगी? वही विषयों में रमन करती रहेंगी, सारा जीवन निकल जाएगा। जब तक इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप अंदर यात्रा नहीं कर सकते। इसलिए आपको यतात्मना भी होना है। और क्या करना है, सर्वभूत हिते रता, जो सब प्राणियों के हित के अनुकूल आचरण करता है, यानी अहिंसा, किसी को कोई कष्ट नहीं देता। अच्छा, तो अब जगत में कैसे व्यवहार करें, देखो यहां से हमको सीखना क्या है, जगत में हम कैसे व्यवहार करें, कभी किसी का नुकसान सपने भी ना करें, ड्रीम में भी ना करें। सर्वभूत हिते रता, अगर आपके पास में ये चार गुण है, कौन कौन से, छीन कल्मसा, संशय रहित, छिन्न द्वैधा, यतात्मना, सर्वभूत हिते रता, ये चार अगर आपके पास में हैं तो आप ज्ञानी हो। और अगर आपको ज्ञानी बनना है तो क्या करना होगा, इन चारों का विथ एफर्ट, प्रयत्न के साथ आपको अपने में लाने पड़ेंगे, अपने में लाने पड़ेंगे। छीन कल्मषा, वासना का नाश करना है, और उसके बाद छिन्न द्वैधा, छीन कल्मषा और छिन्न द्वैधा संशय को खत्म करना है, यतात्मना अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, मन को कंट्रोल करना है, और सर्वभूत हितेरता। तो ऐसा ज्ञानी क्या करता है, देखो ऐसा ज्ञानी जनरली संसार से, अनात्मा से दूर रहता है, दूर रहता है। मगर भोजन के समय अगर कोई मिल जाए या बैठा हो तो उस समय वो काफी कंपैशनेट रहता है। ऐसा नहीं है कि भोजन दिख गया है ये अज्ञानी है इसे दूर रहना, ऐसा नहीं करता है। उस टाइम में उसके प्रति वो दयावान रहता है। अच्छा, उदार रहता है उसके प्रति, बहुत सुंदर। अच्छा, ज्ञानी के लक्षण हमने बता दिए आपको 20 से 24, और ज्ञानी की साधना क्या है, कैसे हम साधना करके ज्ञानी बन सकते हैं, वो 25वें श्लोक में आ गया। अच्छा, अब कर्म संन्यास का विषय का उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं 26वां श्लोक,
काम क्रोध वियुक्तानां,
यतीनां यत चेतसां,
यतीनां यत चेतसां,
अभितो ब्रह्म निर्वाणम्,
अभितो ब्रह्म निर्वाणम्,
वर्तते विदितात्मनां,
वर्तते विदितात्मनां,
काम क्रोध वियुक्तानां, यतीनां यतचेतसां, अभितो ब्रह्म निर्वाणं, वर्तते विदितात्मनां।
काम क्रोध वियुक्तानां, काम क्रोध, इसके साथ और क्या क्या आएंगे, मात्सर्य, ये छह क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सट रिपु कहते हैं हम लोग, ये हमारे दुश्मन हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये छह हमारे दुश्मन हैं, ये हमारे अंतःकरण को क्या करते हैं, अशुद्ध करते हैं, अशुद्ध करते हैं। अच्छा, ये अगर अंतःकरण अशुद्ध होगा तो हमारा मन कैसे होगा, एजिटेटेड होगा, विक्षिप्त होगा, मन हमारा विक्षिप्त होगा। जो इनसे वियुक्त है, जिसके अंदर काम क्रोध नहीं है, ये सट रिपु नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, काम क्रोध वियुक्तानाम। हम लोग क्या हैं, काम क्रोध युक्त हैं और वो वियुक्त है। देखो, काम क्रोध युक्तानाम, काम क्रोध वियुक्तानाम। अच्छा, यति नाम, यति नाम मतलब सन्यासी, ज्ञानी, वो कैसे ज्ञानी बना, श्रवण मनन निधिध्यासन, उसके बाद अपरोक्ष अनुभूति, उसकी अनुभूति हो गई है इसलिए वो ज्ञानी है। यत चेतसाम, यत चेतसाम मतलब उसने अपने मन को शुद्ध किया है, कैसे शुद्ध होता है मन, अब आप लोग को पता लग गया है मन शुद्ध करना है कैसे, ठीक है। यत चेतसा माने अपने मंद्र इंद्रियों को उसने संयमित कर लिया है। अभित ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनाम। अभित, अभित मतलब दोनों स्थिति में, ज्ञान प्राप्त करने के बाद में जो समय उसका जीवन का बाकी है, मतलब जीवित काल में और उसके बाद मरण, मरणोपरांत। अभित, अभित मतलब दोनों समय। तो ज्ञान कब प्राप्त होता है आपका? शरीर रहते रहते ज्ञान प्राप्त हो सकता है, किसी समय भी हो सकता है। और ज्ञान प्राप्त के बाद में ये याद रखना कि तुरंत जो है शरीर छूट नहीं जाएगा। क्यों नहीं छूटेगा? अभी प्रारब्ध बाकी है, प्रारब्ध जब तक रहेगा तब तक जो है वो शरीर रहेगा। अच्छा, तो जीवित काल में वो कैसे रहता है? जीवन मुक्त और मरणोपरांत विदेह मुक्त। ब्रह्म निर्वाण वर्तते, ब्रह्म निर्वाण मतलब उसको मुक्त हो गया, ब्रह्म निर्वाण मुक्ति, मोक्ष उसको मिल गया। कैसे मिला? विदित आत्मनाम, अपनी आत्मा को जान लिया। देखो कितना सुंदर कहा, विदित आत्मना। कैसे मिला? अपनी आत्मा को जान लिया। कैसे जाना? सर्वम निधिध्यासन और अपरोचरुति। अब हम थोड़ा स्पीड में बोल रहे हैं। सर्वम निधिध्यासन अपरोक्ष अनुभूति। अच्छा देखो, समरी ऑफ चैप्टर 5 क्या है? पूरे चैप्टर की समरी क्या है? भगवान कहते हैं पहले आपको कर्मयोग करना है। कर्मयोग क्यों करना है? मन को शुद्ध करना है। उसके बाद उन्होंने कहा मन एवं इंद्रियों को संयम करना है। मन शुद्ध हो गया, अब उस शुद्ध मन को आपको एक जगह लगाना है ना, बिना लगाए तो काम नहीं होगा, मन तो बहुत चंचल है। तब उसको, मन को आपको लगाना है, संयम कीजिए। संयम करके फिर क्या करना है आपको? कर्म संन्यास करना है। कर्म संन्यास का मतलब क्या होता है? कर्म संन्यास का मतलब सर्वान मन निध्यासन। सर्वान मन निध्यासन किस कब किस कर्म क्या करने के बाद करना है? कर्म योग करने के बाद में कर्म संन्यास आता है। अच्छा, फिर अपरोक्ष अनुभूति। अपरोक्ष अनुभूति हो गई, जीवन मुक्ति। उसके बाद जैसे ही प्रारब्ध खत्म हुआ, शरीर गिर जाएगा, विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति मतलब और फिर जन्म नहीं होगा, और जन्म नहीं होगा। अच्छा, तो भगवान का सुझाव जो है एक वर्ष में उन्होंने कह दिया। क्या कहा? दो स्टेप हैं। पहला स्टेप है कर्मयोग करना है, दूसरा स्टेप है कर्म संन्यास। कर्मयोग नंबर 1 स्टेप, नंबर 2 स्टेप कर्म संन्यास। कर्म संन्यास मतलब श्रवण कब बैठेगा, ज्ञान कब बैठेगा? जब मन, अच्छा। अब 27, 28, 29 जो है ध्यान के संबंध में बता रहे हैं। ये टॉपिक ध्यान योग समरीली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 27 और 28 हम एक साथ पढ़ेंगे।
स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान,
स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान,
चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो,
चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो,
प्राणापानौ समौ कृत्वा,
प्राणापानौ समौ कृत्वा,
नासाभ्यन्तरचारिणौ,
नासाभ्यन्तरचारिणौ,
यतेन्द्रियमनो बुद्धिः,
यतेन्द्रियमनो बुद्धिः,
मुनिर्मोक्षपरायणः,
मुनिर्मोक्षपरायणः,
विगतेच्छाभयक्रोधः,
विगतेच्छाभयक्रोधः,
यः सदा मुक्त एव सः,
यः सदा मुक्त एव सः,
स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान्, चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो,
प्राणापानौ समौ कृत्वा,
नासाभ्यन्तरचारिणौ, यतेन्द्रियमनो बुद्धिः, मुनिर्मोक्षपरायणः, विगतेच्छाभयक्रोधः, यः सदा मुक्तः।
स्पर्शान कृत्वा बही बाह्यान। स्पर्शान, स्पर्शान मतलब क्या हुआ, विषय। विषय कहां है, बाहर। ये विषय हमारे भीतर कैसे घुसते हैं, वृत्ति के रूप में, थॉट के रूप में आते हैं, विषय नहीं घुसते हैं। हमने ग्लास देखा, ग्लास नहीं अंदर जा रहा है, क्या जा रहा है, एक केवल वृत्ति उसकी जा रही है, उसका थॉट जा रहा है। अच्छा, तो विषय कृत्वा बही, विषयों को बाहर रहे, मतलब क्या कि वृत्ति भी अंदर ना आए विषयों की, मतलब वैराग्य। स्पर्शान कृत्वा बही बाह्यान, मतलब विषय बाहर ही रहे। विषय तो अंदर घुसते कैसे हैं, वृत्ति के रूप में, वृत्ति भी नहीं आए, मतलब क्या हुआ, वैराग्य। वैराग्य होना चाहिए। विषयों को अंदर कौन लाता है, राग, आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के कारण विषय अंदर आते हैं। हम जिस चीज को चाहते हैं वो विषय हमारे अंदर घुसते हैं, जिस चीज को नहीं चाहते हैं उधर देखते भी नहीं है, राग होता है। तो मन को कैसे कंट्रोल करें, बोले वैराग्य से कंट्रोल करो, बार बार इसका अभ्यास करो, और विषयों में दोष दृष्टि देखो। विषयों में दोष दृष्टि का मतलब क्या, दोष दृष्टि है, विषयों का दोष क्या है, दुख देता है, कभी हमको परमानेंट सुख नहीं दिया, कभी हम फुलफिल नहीं हुए, इसका आदि और अंत होता है, इसके लिए काफी प्रयत्न करना पड़ता है। विषयों का सुख पाने के लिए काफी प्रयत्न करना पड़ता है। अच्छा, यह स्पर्शान कृत्वा बही बाह्यान का मतलब क्या हुआ, पतंजलि योग सूत्र के अंदर जो प्रत्याहार है उसको कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये जो भगवान ने कहा ना, स्पर्शान कृत्वा बही बाह्यान, ये सारे विषय बाहर रहे, अंदर नहीं आना चाहिए, इसका मतलब प्रत्याहार। वेदांत की भाषा में इसको कहेंगे हम उपरम। सुना है वर्ड आपने, उपरम, तत्वबोध में पढ़ा है, उपरम, षट संपत्ति, क्या क्या होता है षट संपत्ति, तीसरा क्या है, उपरति, यही उपरम आ गया। तो वेदांत की भाषा में जिसको उपरम कहते हैं, पतंजलि योग सूत्र की भाषा में जिसको प्रत्याहार कहते हैं, उसको भगवान कहते हैं स्पर्शान कृत्वा बही बाह्यान, विषयों को बाहर ही रहने दो। अच्छा, फिर क्या करो, बोले उसके बाद में सुखासन में बैठ जाओ, विषय बाहर रहे। चक्षु च सैव अंतरे भ्रुवो, आंख कहां जाए फिर, अंतर, अंदर जानी चाहिए, तो अंतर कैसे जाएगी, विषय अंदर नहीं घुसने चाहिए। तो आपकी चक्षु की कैसी स्थिति होनी चाहिए, अगर हम आंख बंद कर लेंगे तो नींद आ सकती है। आप मेडिटेशन सीट पर जब बैठते हो, अगर आंख पूरी बंद कर लो, एक तो बड़ी मुश्किल से सवेरे 4 बजे उठे, उसके बाद में आप बैठोगे और आंख बंद कर लोगे, नींद आ जाती है। हमारी क्लास में हम तो देखते हैं ना, कितने लोग आंख बंद करके बैठे
होते हैं,
हम लोग समझ में आता है क्या हो रहा है, नींद आ जाती है। अच्छा, पूरी आंख खुली रहे फिर क्या होता है, विषय आ जाते हैं, आ जाएंगे ना। तो कैसे मेडिटेशन करें, हाफ, हाफ का मतलब क्या हुआ कि आपकी ये जो पलक जो है वो आपका जो काला पोर्शन है उसको कवर करेगा, ये सादे पोर्शन जो है ना आईज के अंदर जो व्हाइट पोर्शन है, या ये काले के अंदर जो एक डॉट जो मनी है उस मनी को कवर करना है खाली। आप जितने भी आप देखेंगे, आप लॉर्ड शिवा को देखेंगे, गुरु नानक को देखेंगे, तो उनकी वो आप मुद्रा देखिएगा कैसी मुद्रा है, आधी है, क्यों क्यों किया ऐसा आधा, पूरा बंद कर देंगे नींद आ जाएगी, पूरा खुला रहेगा तो विषय घुस जाएंगे। तो अगर हमको सजग रहना है तो क्या करना होगा, कैसे हमको रखना होगा पलकें, तो कहते हैं अर्ध निमिलन, अर्ध आधा रहेगा। आधा का मतलब क्या, आंख का जो है वो मणि को खाली थोड़ा सा कवर करेंगे हम, ताकि विषय हमको दिखाई ना पड़े, पूरा बंद नहीं करेंगे ताकि नींद ना आ जाए, पूरा नहीं खोलेंगे ताकि विषय ना घुस जाए। चक्षु चाहे व अंतरे भ्रुवो, इसका मतलब जगत को भूलो एवं निद्रा में मत जाओ। देखो हम लोग हिंदी में कैसे कहेंगे अर्ध मिलन चक्षु को, जगत को भूलो क्योंकि हम देख नहीं रहे हैं, निद्रा में मत जाओ क्योंकि हम बंद नहीं कर रहे हैं। देखो हुआ ना, सिंपल हिंदी में बोलेंगे कैसे, अर्ध निमिलित चक्षु में आपको मेडिटेशन करना है। फिर क्या करें, प्राणापानो समय कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो। देखो श्वास लेना छोड़ना स्वाभाविक है, आप अगर प्राणायाम करते हो, प्राणायाम हजार किस्म के प्राणायाम है। कोई कहेगा कि आप जब श्वास लो तब आप 1 2 3 4 कहो, फिर उसको होल्ड करो, फिर 1 2 3 4 करो, अब छोड़ो तो 1 2 3 4 5 6 करना, फिर बोलेगा होल्ड इट, फिर बोलेंगे 1 2 3 4 करो। अब ये इसके कॉम्बिनेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत हैं। अगर किसी ने आपको कह दिया कि भाई आप सांस लो 1 2 होल्ड इट, छोड़ने के टाइम में आप 1 2 3 4 5 6 करो, सफोकेशन हो जाएगा, आप पूरी सांस नहीं ले रहे हो, 1 2 खत्म हो गया, स्टॉप इट। हमने आगे आप बताया कि ये प्राण जो है ना हमारी वो है ऊर्जा शक्ति है, प्राण से ही हमारा एनर्जी हाउस है, इसको थोड़ा सा अगर डिस्टर्ब कर दोगे तो पूरा शरीर गड़बड़ हो जाएगा। तो तपोवन जी महाराज कहते थे कि आप जो है प्राण वीक्षण करो, वीक्षण मतलब प्राण जा रहे हैं आ रहे हैं, स्वाभाविक जो चल रहा है उसको ऐसे चलने दो, उसको कंट्रोल नहीं करो, उसका नियमन नहीं करो। अगर आप नियमन करते हो तो उसको हम लोग कहते हैं हठ योग है, एक चीज स्वाभाविक चल रही है आप उसको दिशा बदली करना चाहते हो तो हठ से कर रहे हो ना, तो हठ योग हो जाएगा। तो हमारे पगवान जी महाराज कहते थे कि प्राण वीक्षण करो, केवल देखो उसको, ध्यान वहां ले आओ, ध्यान वहां ले आओ। छठे अध्याय के अंदर भगवान बोलेंगे कि आप अपनी जो है आंखों को नासिका का अग्र देखो, नासिका का अग्र देखने के तो आपको जो है ना हेडेक आ जाएगा, अब दोनों आंख को ऐसे करके हाँ ऐसे देखना है, वेरी डिफिकल्ट। उसका मतलब है अर्ध, उसके बाद में 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं यतेंद्रिय मनोबुद्धि मुनि, उस मुनि ने अपनी इंद्रियों और मन एवं बुद्धि का संयमन कर लिया है। इतना सुख करने के बाद में आपको ध्यान में बैठना है, जितने भी स्टेप बता रहे हैं ना अभी बहुत संक्षेप में बता रहे हैं, और आगे बताएंगे छठे अध्याय में पूरा डिटेल बताएंगे, तब बैठना है। पांचवें अध्याय के 2 स्टेप क्या है, इतना करने के बाद में फिर ध्यान में आना है, और हम सब जो आता है पहले बोलता ध्यान में बैठा दो हमको, हम सीधा ब्रह्म तक ही जाना चाहते हैं। मोक्ष परायण है, मोक्ष परायण जिसका गोल मोक्ष है, गोल जो है मोक्ष होना चाहिए। विगत इच्छा भय क्रोध है, इच्छा भय क्रोध से मुक्त है, हम जानते हैं इच्छा भय क्रोध ये कहां से आया, इच्छा कहां से आती है, वासना से आती है, वासना को हमने छीन कलम से आगे कर चुके हैं, वासना खत्म होगी उसके बाद में आप आगे बढ़ोगे। अच्छा तो एक कंटेम्पलेटिव मुनि के मतलब समरी क्या है, पहला है विषय को बाहर रखें, नंबर 1। नंबर 2 मन के विषयों से प्रत्याहार या उपरम, मन को विषयों से प्रत्याहार या उपरम, वहां से आपको हटाना है। तीसरा अर्धनिमिलित चक्षु, चक्षु कैसा होना चाहिए, अर्धनिमिलित चक्षु होना चाहिए। और प्राण अपान की समता होनी चाहिए, प्राण और अपान आप प्राण वीक्षण करो। मन इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। लक्ष्य क्या है, मोक्ष है, हमको मुक्ति चाहिए। इच्छा भय क्रोध से मुक्त, सदा मुक्त एव स है, वह मुक्त है, वह ध्यान योग की समरी है। ये सारा का सारा ध्यान योग की समरी है। दो श्लोक के अंदर भगवान ने पूरा ध्यान योग बता दिया। आपने समझ लिया ध्यान योग, बस इतना ही है ध्यान योग। अच्छा बता तो दिया है, मगर अब ये बताइए कि भाई ध्यान हम करें क्यों है? अब इतना आप हमको लंबा रास्ता दिखा दियो कि कर्म योग करो, मन शुद्ध होगा, फिर चिन्मय मिशन आओ, श्रवण करो, फिर मनन करो, डाउट फ्री करो, उसके बाद निधि ध्यासन करो, करने के बाद में फिर अपरोक्ष अनुभूति के लिए आप मेडिटेशन सीट पर बैठो, कैसे बैठो सब बताएंगे बाद में, सब बताएंगे। इतना करने के बाद में मिलेगा क्या, ये पहले बताओ हमको, तब तो हम करेंगे। तो भगवान ध्यान का फल बताते हैं अंतिम श्लोक के अंदर में, भगवान ध्यान योग का फल बताते हैं। क्या फल है, 29वां श्लोक।
भोक्तारं यज्ञ तपसाम,
भोक्तारं यज्ञ तपसाम,
सर्वलोक महेश्वरम,
सर्वलोक महेश्वरम,
सुहृदं सर्वभूतानां,
सुहृदं सर्वभूतानां,
ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति,
ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति,
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदं सर्वभूतानां, ज्ञात्वा माम शांति।
तो भगवान कहते हैं चौथे पाद के अंदर, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, मेरे को जानने से क्या मिलेगा आपको? अगर आप सोचो आपको डॉलर मिलेंगे तो इतनी साधना नहीं करनी है। आप अगर पैसे चाहते हो, स्वर्ग चाहते हो, हायर लोक चाहते हो, तो ये सब कुछ नहीं करना है। मगर अगर आपको शांति चाहिए तो भगवान कहते हैं ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, मुझे जानने पर आपको क्या मिलेगा, परम शांति मिलेगी, परम शांति मिलेगी। आप विश्वास करते हो क्या? कैसे मिलती है शांति? अशांति कहां भोग करते हैं,
मन
में। ध्यान में आप कहां चले जाते हो, मन के ऊपर चले जाते हो, ऊपर मतलब बियॉन्ड माइंड। अगर आप बियॉन्ड माइंड चले गए फिर क्या हुआ, शांति मिलेगी ना। अशांति कहां है, मन में। बियॉन्ड माइंड चले जाने पर क्या मिलेगा, शांति मिलेगी। अब भगवान कहते हैं ज्ञाता वाम शांति मिलिच्छति, तो ये कैसे जान पाओगे, बोले ध्यान योग में। जानने के लिए अल्टीमेटली आपको ध्यान योग में जाना है, श्रवण मनन निधि ध्यासन करना होगा, अपरोक्ष अनुभूति करनी होगी, तब आप अपने को आत्मज्ञान ना हो, आत्मज्ञान होगा। अच्छा जानना क्या, ज्ञात्वा क्या जाने, हमको ये जानना है कि मैं जीव नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्मन हूं, यही जानना है, इतना ही जानना है। मैं कौन हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, इतना ही जानना है। तत्त्वमसि, इतना ही जानना है। मगर अभी काम नहीं हो रहा है, अभी इतनी बार जो है हम लोगों ने तत्त्वमसि किया, अहम ब्रह्मास्मि बोलते आते हैं, काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पहला स्टेप नहीं हुआ अभी। भगवान ने भी सारा ज्ञान दूसरे अध्याय में दे दिया था, आत्मज्ञान। और उसके बाद में फिर भगवान कल आप गीता की क्लास में आइएगा तो हम बताएंगे कि भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं। भगवान कहेंगे तुम ज्ञान के अधिकारी नहीं हो। क्या करना होगा बताएंगे, भगवान बताएंगे क्या करना होगा। अच्छा, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं कौन हूं? मैं भोक्ता हूं, मैं भोग करने वाला हूं। किसका? यज्ञ और तपस। जो कोई भी यज्ञ करता है या तपस करता है वो किसके लिए करता है यज्ञ? आप जब फायर रिचुअल करते हो, जब मंत्र की आहुति देते हो, किसके लिए देते हो? वही तो कह रहा है भोक्तारम यज्ञ तपसाम। जो आप तपस कर रहे हो, तपस क्या है? तब तो बताना होगा तप की डिफिनेशन क्या है। प्रेमल जी नहीं है। मनस्च इंद्रियाणाम एकाग्रम परमम तप मनसोदनम। मनस्य इंद्रियाणाम एकाग्रम परमम तप मनसोदनम दो बार पढ़ाया गया है और दो बार हमने तप की परिभाषा कही है और बीच बीच में कई बार कही है। आप लोग सोचते हो कि भाई हम इसको याद कर लेंगे, सुन लिया बस हो गया। अगर वही ज्ञान तो को आपको मिलता नहीं है ना, जब हमको चाहिए तब इज नॉट अवेलेबल। मनस्य इंद्रियाणाम एकाग्रम परमम तप। परम तप क्या है? मन और इंद्रियों को एकाग्र करना, ये परम तप है। तो एकाग्र करके हम किसका चिंतन करते हैं? भगवान का करते हैं। किसके लिए करते हैं? तो भगवान कहते हैं कि यज्ञ और तपस का भोक्ता कौन है? मैं हूं। अच्छा, अच्छी बात है। हम जब पूजा समाप्त करते हैं तो हम क्या कहते हैं? ओम तत्सत। गीता का हर पाठ के बाद में हम क्या कहते हैं? ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु कर देते हैं, सब कुछ ब्रह्मार्पण को दे दिया। या आत्मनिवेदन जब हम करते हैं, कैसा है वो आत्मनिवेदन जब करते हैं
पूजा में?
जो संकल्प
समर्पण, आत्मनिवेदन,
आत्मनिवेदन
पूजा में हम लोग नहीं करते?
हाँ,
एक साथ गाते हैं।
हाँ,
कैसे शुरू होता है?
आप लोग पूजा में आते हो हरदम?
व्हाट एवर अपनी डिजायर हम उसमें डालते हैं ना।
हम पूजा में एक है ना स्टेप, आत्मनिवेदनम।
सबको आपको मालूम है?
आप सबको मालूम है। अभी शुरू करेंगे तो गाना चालू कर दोगे।
शुरू करो। कायेन शरीर से, मन से, स्पीच से, प्रकृति जो हमारी प्रकृति स्वभाव है, वासना के साथ सब कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं। देखो हम कहते हैं, रोज कहते हैं। अच्छा, उसके बाद में भगवान आगे जाके भी कहेंगे, यत करोसी यद अस्नासी यद जिहोसी ददासी यत यत तपस्यसी कौन्तेय तत् कुरुस्व मदर्पणम। भगवान कहेंगे कि सब कुछ मेरे लिए करो। हम लोग कर्मियों क्या कर रहे हैं? आपको क्या बताया हमने कर्मियों का? जो भी आप काम करते हो सब भगवान के लिए। यहां भी देखो, यत करोसी जो भी आप करते हो, यद अस्नासी जो भी आप खाते हो, यद जुहोसी जो भी आप आहुति देते हो, ददासी यत जो भी आप दान देते हो, यत तपस्यसी जो भी आप तप करते हो, वो अर्जुन तो मेरे लिए कर, भगवान के लिए कर, भगवान की खुशी के लिए करो। तो भगवान को अर्पण करने से क्या होता है? भगवान खुश होते हैं। अच्छा, अगर हमारी सारे कर्म ही अगर भगवान के लिए कर दें तो भगवान बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। सारे कर्म अगर भगवान के लिए हो तो भगवान बहुत खुश होंगे। अच्छा, सर्वलोक महेश्वरम, भगवान कहते हैं मैं कौन हूं? सर्वलोक महेश्वरम, मैं महाईश्वर हूं सर्वलोकों का। अच्छा, मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का ईश्वर हूं। कितने ब्रह्मांड है? अनंत कोटि ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड में कितने लोक हैं? 14 लोक हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक हैं। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड के ईश्वर भगवान कहते मैं हूं। अच्छा ये बताओ, जो इतनी ब्रह्मांड का मालिक है वो क्या हमारे से कुछ अपेक्षा रखता है? क्या हम उसको अपने कर्मों से खुश कर सकते हैं? उसे कुछ नहीं चाहिए, वो हमसे कुछ नहीं मांगता है। वो कौन है? सुहृद सर्वभूतानां, सुहृद, वो हमारा मित्र है, बिना अपेक्षा के हम हमारी सहायता करता है। हमें कुछ भी, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, मगर वो हमारा उपकार करता रहता है। सारी दुनिया उसी से चल रही है। उसको जानने से क्या होगा? परम शांति मिलेगी। तो इस तरह से हमारा पांचवा अध्याय खत्म होता है। तो ध्यान योग का फल क्या हुआ? तो आप लोग को अगर शांति चाहिए तो आपको ध्यान में बैठना है। ध्यान के पहले और क्या क्या करना है? चलो अब इसको केवल इंटेलेक्ट लेवल पर मत ही रखना। एक कहानी छोटी सी, कबूतर की कहानी। एक जंगल के अंदर जो है एक हंटर आता था, वो पक्षियों को पकड़ के ले जाता था। तो उसमें से एक ज्ञानी पक्षी था। उस ज्ञानी पक्षी ने सब पक्षियों को समझाया कि देखो वो आएगा, फिर दाना डालेगा, उस टाइम में जो है तुम लोग जो है उतरना नहीं,
क्योंकि वो
जाल बिछाएगा, पकड़ के ले जाएगा, उतरना नहीं। सबको रटा दिया, सबको रटा दिया, जब जितने भी कबूतर थे बच्चे सबको रटा दिया। अब वो हंटर आया, दाना उसने गिराया, वो सारे के सारे पक्षी आ गए और वो कहने लगे, हंटर आएगा, दाना बिछाएगा, वो सबको लेके। तो इसको जो है हमें याद रखना पड़ेगा कि हमको क्या क्या करना है, फिर उसको कार्यान्वित करना होगा। खाली रटने से नहीं होने वाला है। चलो पुष्पिका वाक्य देखो, प्रथम सूक्त का वाक्य।
अच्छा, एक साथ करेंगे ना पुष्पिका वाक्य। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। फर्स्ट श्लोक हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। अर्जुन युवाच, सन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यश्रेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ